तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, अल्लाह, शिव। तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो।
नमस्कार। समय का चक्र घूमता जाता है, रह जाती हैं केवल स्मृतियां, और इन्हीं स्मृतियों को ताजा करने के लिए यादगारें बनाई जाती हैं, जयंतियां मनाई जाती हैं। देवा अधिदेव महादेव शिव की महिमा अनंत है, उनके कर्म दिव्य हैं और उनका जन्म अलौकिक है। इसी दिव्यता और अलौकिकता की यादगार में मनाया जाता है महाशिवरात्रि का पर्व। भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या से एक दिन पहले शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार, रीति रिवाज और जयंतियां किसी न किसी तरह से हमें आध्यात्मिकता से जोड़ती हैं। महाशिवरात्रि के दिन की जाने वाली शिव पूजा अर्चना का भी अपना विशेष महत्व है। तो आइए मंदिर में प्रवेश करते हैं और पूरे विधि विधान से इस पूजा को करते हैं।
ओम गणादासा गणपति वंदवामहे, प्रिया दासा प्रियपति वंदवामहे, निधि दासा निधिपति वंदवामहे। वसो भवा आहमजानि गर्भधमा कवजासि गर्भधम्मः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो च सखा तमेव, तमेव विद्याद्रविणम् तमेव, तमेव सर्वम् मम देव देव। पापो हम पापकर्मा, हम पापात्मा पापसंभवा, त्रायिमां सर्वदानाता सर्वपापहरो भव। न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि।
पूजा तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जाने बगैर शिवरात्रि मनाना, पूजा पाठ करना निरर्थक लगता है। चलिए पुजारी जी से शिवरात्रि से संबंधित सवालों के जवाब जानते हैं। पंडित मदन शास्त्री जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है उसका क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व?
प्राचीन समय में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र मंथन के समय जब आसुरी शक्तियां और देव शक्तियों ने मिल करके समुद्र मंथन किया, तो सर्वप्रथम उस समुद्र से जो है हलाहल विष निकला। भगवान शिव ने जो है उस हलाहल विष को पान किया, और उस हलाहल विष के पान करने से जो है जो संसार का विनाश हो रहा था वो वहीं पर रुक गया, समाप्त हो गया। तो उनकी इस महान अद्भुत कार्य को देख करके, देखते हुए जो है, और संसार को सृष्टि के विनाश से बचाने के लिए जो है ये शिवरात्रि का पर्व होता है। और भी मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए भी शिवरात्रि का पर्व होता है।
अब यही प्रश्न शिव भक्तों से भी पूछते हैं और जानते हैं कि वे इन सभी बातों के बारे में कितने जागरूक हैं। आज जो आप यहाँ हैं शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और आप क्या सोचते हैं क्यों मनाया जाता है?
इस दिन शिव जी की और पार्वती की, शिव जी के जन्मदिन का को मनाया जाता है।
आज के दिन मतलब शंकर भगवान का भी विवाह हुआ था, तो इसीलिए मतलब उनकी खुशी में मनाया जाता है।
मेरे को तो इस डिटेल में नहीं मालूम, बिकॉज हमारे पेरेंट्स मनाते हैं, एवरी कम्युनिटी इज हिंदू कम्युनिटी सेलिब्रेटिंग।
शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी।
पंडित जी और भक्तों की बात को तो जाना, इसी बात को ब्रह्म कुमारी आशा बहन जी से भी स्पष्ट कराते हैं कि उनका क्या कहना है।
शिवरात्रि का पर्व वस्तुतः परम पिता परमात्मा शिव के इस धरा पर अवतरित होने की यादगार है। जिस समय ये सारी सृष्टि पांच विकारों के कारण पापाचार भ्रष्टाचार अनाचार दुराचार के वशीभूत हो जाती है और उसके कारण से कई प्रकार के अन्याय सारे संसार में छाए हुए होते हैं, जिसको हम यूं कहें पूर्ण रूप से कलयुग आया हुआ होता है, चरम सीमा पर होता है, तब परमपिता परमात्मा शिव धरा पर अवतरित होकर कलयुग का अंत और सत्युग की आदि, जिसे हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, उसमें अवतरित होकर के पुरानी आसुरी सृष्टि का परिवर्तन, रात्रि का परिवर्तन नई सत्युगी उषा काल में करते हैं। इसीलिए कहावत भी बनी हुई है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य परमात्मा के इस धरा पर अवतरित होने से अज्ञानता के वशीभूत जो हम लोग दुष्कर्म करते हैं उनसे मुक्ति पाते हैं, इसकी ही यादगार शिवरात्रि का पर्व है।
पंडित जी, एक बात जो देखी गई है कि पिंडी स्वरूप में पूजन शायद एक ही ईश्वर है, एक देवता है जिनकी किया जाता है, तो पिंडी स्वरूप का जो पूजन है वो क्या वजह है और क्यों किया?
ऐसा है, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, वो जो है परम ज्योत स्वरूप परमात्मा को माना है। जो शिव का निराकार स्वरूप है वही पिंडी का स्वरूप है, और जो साकार स्वरूप होता है उसमें दुर्गुण आ सकते हैं, क्योंकि जो साकार स्वरूप होगा उसमें जो है कामनाएं भी होंगी, इच्छाएं भी होंगी, गुण भी होंगे, दुर्गुण भी होंगे, लेकिन जो निराकार स्वरूप होता है वो दुर्गुणों और कामनाओं और किसी भी प्रकार के कह लीजिए कि अशुद्धता से मलमष्टा से दूर होता है। तो इसलिए जो शिव का पिंड स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप माना गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। जो स्वरूप बने हुए हैं, जो स्वरूप जिन जिन देवताओं के या जिन जिन देवियों के बने हुए हैं उनमें कहीं न कहीं कभी न कभी कोई विकार आ सकता है, लेकिन जो ज्योत स्वरूप है वो परम शुद्ध माना जाता है।
फीलिंग यही होती है कि प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं।
मैं ऐसा कोई खास विचार नहीं है।
शिव के शांत स्वरूप ध्यान में रहता है,
शंकर भगवान और गोरा माता का
साक्षात हमारे सामने शिव जी पार्वती बैठे हुए हैं और उनकी हम पूजा कर रहे हैं।
परम पिता परमात्मा शिव निराकार है। निराकार से भाव ये नहीं है कि उनका कोई रूप ही नहीं है। उनके लिए कहा गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म बिनु नाना। निराकार की आराधना करने हेतु मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम के रूप से प्रतिमाएं रखी जाती हैं। परमात्मा पिता ज्योतिर्मय बिंदु हैं और बिंदु की आराधना करने हेतु ही बड़ी पिंडी बनाई जाती है। परंतु प्रश्न उठता है, इतना बड़ा कार्य परमात्मा पिता ज्योति बिंदु इस धरा पर अवतरित होकर के कैसे कर सके होंगे? उसकी यादगार में आप सबने पाया होगा कि मंदिर में शिवलिंग के साथ एक नंदी गण भी होता है, और लोग कहते हैं कि शिवजी ने नंदी गण पर सवारी की थी। थोड़ा सा विवेक ये सवाल पूछता है, क्या ज्योति बिंदु बिना हाथ नाक कान मुंह पैर वाली प्रतिमा क्या वो बैल पर सवारी कर सकती है? परंतु ये एक बात का द्योतक है, और वो क्या कि निराकार परमात्मा एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर, जिसे कहा जाता है भागीरथ, उसके माध्यम से ज्ञान और योग की वर्षा बरसाते हैं। नंदी गण का अर्थ है गण माना पीपल, लोग, और नंदी अर्थात आनंद प्रदान करने वाला। तो बैल से आनंद प्रदान हो ये बात तो समझ में नहीं आती, परंतु परमात्मा पिता ने अपने कार्य हेतु पुरानी सृष्टि के परिवर्तन और नई दैवी सृष्टि की स्थापना हेतु एक साधारण मनुष्य तन का आधार लिया, जिसका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा। उसे यादगार में मंदिरों में नंदीगण होता है। एक बात और भी है, कई बार लोग शिव और शंकर जी को एक मान लेते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वे रचयिता हैं, इसीलिए उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है।
उपवास और जागरण, जो पूरी रात जागरण चलता है, उसका कुछ खास और महत्व है आज के दिन?
उपवास और व्रत ये आत्म शुद्धि के लिए जो है एक उनका जो है उपचार होता है। हमारी आत्मा में जो है, जो ज्योत स्वरूप है, जो शिव स्वरूप आत्मा है, उसमें संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कलमष्टा पाप विकार आ जाते हैं, उन विकारों को धोने के लिए जो है उपवास किया जाता है।
भगवान ने हमें इतना दिया है तो हम भी उन्हें वापस कुछ दे रहे हैं,
ऐसा विश्वास हम करते हैं जी कि ये हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी जी, इसलिए हम इसका उपवास करते हैं।
पार्वती जी की पूजा करते हैं और सुहाग का आशीर्वाद लेने के लिए शिवरात्रि की पूजा की जाती
है। No idea.
और जागरण भी मतलब उन्हीं को रिझाने के लिए करते है दुनिया।
आज के दिन भक्त जन उपवास भी रखते हैं और जागरण भी करते हैं, लेकिन उपवास एक गहरी चीज को सिखलाता है। उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ होता है रहना। तो परमात्मा पिता शिव ने ये कहा था कि हे आत्माएं, मन से मेरे समीप रहो। आज हम आत्माएं ये काम तो कर नहीं पाती हैं और स्वयं को भूखा रखकर व्रत लेकर हम सब उपवास कर परमात्मा शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। क्या ही अच्छा हो हम आज के दिन ये संकल्प करें कि हमारे मन के अंदर कदापि भी नकारात्मक संकल्प, बुरे विचार ये नहीं उठेंगे। अगर इनका हम उपवास करें तो शिवरात्रि सार्थक सिद्ध हो जाएगी। इसी प्रकार से आज के दिन लोग जागरण करते हैं, रात भर जागते हैं। कैसे जागते हैं वो आप सब स्वयं भी जानते हैं, लेकिन संसार एक रणभूमि है, युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है। इसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों का युद्ध चलता है। परमात्मा पिता ने ये कहा था कि हे आत्माएं, अगर आप सदा अपने आप को आत्म स्थिति में रखेंगी, आत्म अभिमानी अवस्था में रखेंगी, तो ये जो पांच विकार हैं, पांच भूत हैं, ये आप पर प्रहार नहीं कर पाएंगे और आप कदापि सुषुप्त अवस्था में नहीं जाएंगे। इसी को कहा गया परमात्मा ने तीसरी आंख खोली। तीसरी आंख वस्तुतः निराकार परमात्मा शिव की नहीं है, हम आत्माओं की दो आंखें साकार और तीसरी आंखें ज्ञान की। आत्म शुद्धि अगर हम चाहते हैं तो स्वयं को आत्मा समझ करके कार्य व्यवहार करना होगा और यही सच्चा सच्चा जागरण है।
सुगंधित पुष्पों पे हम हर अपने अर्धदेव की पूजा करते हैं, लेकिन जब शिव की बात आती है, महाशिव की बात आती है, तो विषैले फल फूल लेके आते हैं, धतूरा आंख, ये भी इसका भी कोई खास में?
जो निराकार शिव की पूजा करते हैं, जो पिंडी स्वरूप शिव की पूजा करते हैं, ये सभी जन साधारण व्यक्ति के लिए है। तो जन साधारण व्यक्ति के लिए जो भी सुलभ है, उसमें ऐसा नहीं है कि धतूरा ही चढ़ाना चाहिए या भांग के पत्ते ही चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र प्रमुख रूप से चढ़ाया जाता है, अति प्रिय है, और जो भांग और धतूरा है ये तो इस भावना के साथ कि ये जन साधारण को सुलभ है और ये जन साधारण के देव हैं।
शिव जी इसको बड़े चाव से खाते थे जी, और ऐसा सुनने में आया है कि इनका जो भोजन था वो यही भोजन था उनका।
मुझे ही पता।
अर्पण करते हैं बिकॉज ही कैन रिलिश दैट।
भगवान शिव मस्त भगवानों में से माने जाते हैं, इसलिए इन चीजों से इनकी पूजा की जाती है।
शिवजी भगवान है, उनको डिस्ट्रॉयर ही कहते हैं, यानी कि ये शमशान के अंदर रहते हैं और शमशान धतूरा वगैरह ये सभी होते हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो वहाँ पर ये सब, तो इसीलिए इनके ऊपर भांग धतूरा वगैरह चढ़ाया जाता है।
शुरू से उनको धतूरा आग उनका भोजन रहा है और शिवजी बहुत खुश होते थे ये सब पा करके।
शिवरात्रि के दिन भक्तजन सामान्य जनता बहुत श्रद्धा और भावना से अपनी अर्चना की थाली में अक, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि ले जाते हैं और उनका मानना है कि परमात्मा शिव को ये चीजें पसंद थी। वास्तव में अक, धतूरा इत्यादि विषाक्त और परमात्मा पिता मात्र इनसे प्रसन्न नहीं होते। असली बात तो ये है कि हमारे जीवन के अंदर जो बुराइयां हैं, विषैली संकल्प सहित संरचनाएं हैं, उन संस्कारों का हम आत्माओं ने त्याग करना है। अगर किसी को कोई चीज भेंट की जाती है तो अच्छी चीज, परमात्मा पिता तब हम आत्माओं से प्रसन्न होंगे जब हम आज के दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, घृणा, भय, इनमें से कोई चीज हम उनके ऊपर अर्पित करें। जो अक अपने अंदर है उस अक को निकाल करके हम अर्पित करें। जो धतुरे सदृश विषैली संकल्प है हमारे, उन संकल्पों का हम परित्याग करें, तब हम परमात्मा शिव को प्रसन्न कर पाएंगे।
परमात्मा शिव परम दयालु, परम कृपालु और कल्याणकारी हैं। इसीलिए पूरे भारत में ही नहीं, उनके मंदिर समूचे विश्व में व्याप्त हैं। पूरे भारत में ज्योति बिंदु रूप परमात्मा शिव के 12 यादगार ज्योतिर्लिंगम तीर्थ स्थान हैं। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में अद्वितीय है।
भारतवर्ष में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र में सागर के निकट स्थित है। सोम का अर्थ है अमृत। कल्याण और सुख के स्रोत परमात्मा के ज्ञान अमृत से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। और मानव दिव्य बुद्धि से प्रकाशमान हो जाता है। अब आइए चलें हिमालय की ओर। बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत की उत्तुंग श्रृंखलाओं की गोद में अवस्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्मठों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। केदारेश्वर शिव के दर्शन की अभिलाषा लेकर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव भक्त बड़ी दुसाध यात्रा कर इस ऊंचे मंदिर तक पहुंचते हैं। यह इस बात का संकेत है कि परिश्रम का फल मधुर होता है, और वह भी यदि सच्चे मन से आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण हेतु किया जाए तो निश्चित ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हम उनसे सफलता का वरदान प्राप्त करते हैं। परली वैद्यनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भगवान वैद्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जब संसार के सारे वैद्य सफल नहीं हो पाते हैं तो परम वैद्य परमात्मा स्वयं अवतरित हो सभी का रोग कष्ट मिटा देते हैं। आंध्र प्रदेश से अब हम चलते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंगम है। कहा जाता है कि राम ने रावण पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। बहुत से हिंदू पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री राम ने भी शिव की पूजा की। इससे मनुष्यों के साथ देवों का भी परमेश्वर शिव में अगाध स्नेह एवं अपूर्व भक्ति का संकेत मिलता है। निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ही सर्व आत्माओं के परम पिता है। वही महेश्वर है, देवेश्वर तो परमेश्वर भी।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों की इस अद्भुत अलौकिक यात्रा के बाद एक अनोखी आत्मिक शांति की अनुभूति हो रही है। और आइए अब चलते हैं माउंट आबू, जहां ब्रह्मा कुमारी की मुख्य सह प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी आबू के शिखर से शिवरात्रि के इस पर्व पर ईश्वरीय संदेश दे रही हैं।
ओम शांति। आज बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि हम सभी मिलकर के अपने प्यारे ते प्यारे सुखदाता शांतिदाता आनंद के दाता परम पिता परमात्मा का जयंती मना रहे हैं, जिसको शिव जयंती के नाम से मनाते आते हैं। लेकिन ये जरूर हमको आज के दिन संकल्प करना चाहिए कि ये जयंती हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा की जयंती है, तो परम पिता परमात्मा की जयंती को कितने खुशी से उमंग उत्साह से मनानी चाहिए। और आज के दिन हमारा तो यही संकल्प है कि हम सभी परमात्मा के बच्चे मिलकर के परमात्मा पिता की जयंती की सौगात अपने पिता से ले। वो क्या ले? कि हमारे जीवन में कभी भी दुख और अशांति का नाम निशान नहीं हो, उसके लिए हम परमात्मा के याद में रहेंगे, तो याद से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। जो कहावत है, शिव के भंडारे भरपूर काल कंटक सब दूर, तो शिव परमात्मा के याद में रहने से सब दुख अशांति जो भी हम नहीं चाहते हैं वो हमारे से खत्म हो जाएंगे और हम एवर हैप्पी हेल्दी लाइफ का अनुभव करेंगे।
दादी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा शिव से अविनाशी संबंध जोड़ने के बाद ही हम एवर हेल्दी एवर हैप्पी लाइफ का अनुभव कर सकते हैं। आज महाशिवरात्रि के पर्व के दिन हमने इतनी सुंदर और प्रेरणादायक बातें सुनी। शिवरात्रि का ये पर्व हमारे लिए तभी सार्थक है जब हम स्वयं को परमात्मा की संतान आत्मा समझेंगे और परमात्मा को वो जो है जैसे हैं उनके सत्य स्वरूप को समझकर उनसे बुद्धि योग जोड़ेंगे। मित्रों, कितनी ही शिवरात्रियां आई और चली गई, क्यों ना इस शिवरात्रि ये दृढ़ संकल्प कर इसे यादगार बना ले। और इसके साथ ही अब समय है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन चलते चलते एक बार फिर शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।